अरुणिमा की आइसक्रीम क्रेविंग की जिद पूरी करके आते हुए आखिरकार आस्तिक को सुबह हो गई। सुबह के अगले दिन जब आस्तिक की गाड़ी अपने घर के सामने पार्क होती है तो उसने देखा कि पहले से ही एक गाड़ी वहां पर खड़ी है। ये देखकर आस्तिक हैरान हो गया। वो अरुणिमा को गाड़ी से बाहर निकालता है, लेकिन जैसे ही अरुणिमा ने उस गाड़ी को देखा उसकी आंखें एकदम से चमक जाती हैं और वो तुरंत खुश होते हुए कहती है, आस्तिक, मम्मी पापा आए हैं। आस्तिक ये सुनकर हैरान हो जाता है, लेकिन अरुणिमा की खुशी देखते बन रही थी। आस्तिक उसे लेकर घर के अंदर आता है तो सच में बृजेश जी और आशा जी आए हुए थे। वे आस्तिक और अरुणिमा को एक साथ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। आशा जी अरुणिमा के पास आती हैं और उसके माथे को चूमते हुए उसके पेट को देखती हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए अरुणिमा को गले लगाया और खुश होते हुए कहा, कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। बृजेश जी भी उनके पास आते हैं और मुस्कुराते हुए अरुणिमा के सिर पर हाथ रखते हैं। बृजेश जी की मुस्कुराहट का आस्तिक जवाब देता है और उन्हें देखकर हेलो कहता है। थोड़ी देर बाद सारा परिवार एक साथ सोफे पर बैठा हुआ था। अरुणिमा बता रही थी कि आस्तिक उसका कैसे ख्याल रखता है और ये देखकर बृजेश जी और आशा जी बहुत खुश हो रहे थे। वे अरुणिमा की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर भी बहुत खुश हुए थे और उस समय आना चाहते थे, लेकिन उस वक्त अरुणिमा ने उन्हें मना कर दिया था। उस समय उन्हें किसी और के पास जाना ज्यादा जरूरी था। आरुषि के बारे में सुनकर उन दोनों को भी बहुत बुरा लगा था। वे आरुषि के लिए कभी बुरा नहीं चाहते थे। उनके लिए आरुषि भी उनकी बेटी थी। उन्होंने दोनों बेटियों को एक साथ गोद लिया था और आरुषि को भी उतना ही प्यार करते थे, लेकिन आरुषि की जो कंडीशन थी उसने खुद को ही सबसे दूर कर लिया था। बृजेश जी और आशा जी को आरुषि के बारे में सुनकर बहुत तकलीफ हुई थी। वे उससे मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे, लेकिन शायद अब ये होना मुमकिन नहीं था। आशा जी ने आस्तिक को डांटते हुए कहा, आस्तिक, हमें खुशी है कि तुम अरुणिमा की इतनी केयर करते हो, उसकी इतनी देखभाल करते हो और उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन इतनी रात को इसे लेकर बाहर जाने का क्या मतलब है? तुम जानती हो ना इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो फिर तुम इसे इतनी रात को बाहर क्यों लेकर गए, वो भी अकेले बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड के? जानती हो ना ये कितना खतरनाक हो सकता है। आस्तिक ने तुरंत कहा, मम्मी, मुझसे कुछ कहने से पहले आप अपनी बेटी को समझाइए। इसके लिए मैंने पूरे किचन में ग्रॉसरी मार्केट खोल रखा है, लेकिन नहीं, मैडम को रात के 1 बजे आइसक्रीम खानी थी तो स्पेशली शहर वाले मॉल तक लेकर गया था और आइसक्रीम की दुकान ओपन करवाकर इसकी फरमाइश पूरी की है, लेकिन उसके बाद भी मैडम का मन कहाँ भर रहा था। 5वीं आइसक्रीम जबरदस्ती इसके हाथ से छीनी है मैंने और उसके बाद पूरे रास्ते मुझसे लड़ती हुई आई है। आशा जी की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो अरुणिमा की तरफ देखने लगती हैं, जो मासूम सी अपने पेरेंट्स को देख रही थी, लेकिन उन निगाहों में सिर्फ आस्तिक ही आ सकता था। आशा जी ने लगभग अरुणिमा को डांटते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? अभी सेहत की जरा भी परवाह नहीं है अपनी? अपनी ना सही पर अपने बच्चों की परवाह तो करो ना। बाहर इतनी ठंड हो रही है और ऐसे में तुम्हें आइसक्रीम खानी थी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो होने वाला है वो तुम दोनों के भरोसे रहेगा कैसे? तुम दोनों खुद को नहीं संभाल पा रहे हो, उस मासूम सी जान को कैसे संभालोगे? आस्तिक और अरुणिमा दोनों चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे और उनके डांट को बिल्कुल किसी आदर्शवादी बच्चे की तरह झेल रहे थे। आखिर हो भी क्यों ना, वे दोनों खुद अब पेरेंट्स बनने वाले थे, लेकिन बचपना उन दोनों में अभी भी एक दूसरे के लिए झलक जाता था। कुछ दिनों बाद अरुणिमा का सेकेंड सेमेस्टर टेस्ट हो गया था और सब कुछ नॉर्मल था। आज आस्तिक अरुणिमा को बहुत गुस्से में देख रहा था और अरुणिमा उसे इग्नोर करते हुए तैयार हो रही थी। आस्तिक ने लगभग उसके हाथों से कंघी छीनकर ड्रेसिंग टेबल पर पटकते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? जब मैं मना कर रहा हूँ तो क्यों एक ही सवाल बार बार कर रही हो? क्या जरूरत है तुम्हें जेल जाकर आरुषि से मिलने की? अरुणिमा ने फिर से कंघी उठा ली और अपने बालों को संभालते हुए कहा, मैं आरुषि से मिलने इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो मुझसे मिलना चाहती है और तुम्हें तो पता है ना उसकी क्या कंडीशन है। ऐसे में डॉक्टर ने उसे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए कहा है, पर वो जिद पर अड़ी हुई है कि जब तक मुझसे नहीं मिलेगी अपना ट्रीटमेंट आगे नहीं कर पाएगी। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है आस्तिक, मम्मी के लिए भी है। मम्मी भी उससे मिलना चाहती हैं पर आरुषि उसे नहीं मिलना चाहती। मुझे आरुषि को मम्मी से मिलवाना है। तुम समझ सकते हो ना इस वक्त हमारी फैमिली किस हालात से गुजर रही है? आस्तिक ने गुस्से में कहा, हाँ, अच्छी तरह समझ रहा हूँ और ये भी समझ रहा हूँ कि तुम उस बहन से मिलने के लिए जा रही हो जिसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की, तुम्हारा इतना बड़ा एक्सीडेंट करवाया था। देखो अरुणिमा, मैं पहले तुम्हें एक बार खो चुका हूँ और अपने बच्चों को भी खो चुका हूँ। मैं दोबारा उस लड़की की वजह से हमारी हंसी खुशी की जिंदगी में फिर से कोई प्रॉब्लम नहीं चाहता हूँ। अरुणिमा उसकी फिक्र समझ सकती थी। उसने आस्तिक का हाथ पकड़ते हुए कहा, इस बार कुछ भी नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ तुमसे। तुम्हारी अरुणिमा और तुम्हारा बच्चा जैसे जा रहे हैं वैसे ही वापस आएंगे, लेकिन मेरा अपनी बहन से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे ये तो याद नहीं कि उसने पहले मेरे साथ कितना गलत किया या क्यों वो मुझसे नफरत करती थी, लेकिन जब उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मुझे उसकी आंखों में सच्चाई नजर आई, पर फिर भी मैं उसे माफ़ नहीं कर सकी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी वजह से मैंने अपने बच्चों को खोया था। पर तुम खुद भी तो सोचो आस्तिक, उसने एक बार कहने पर सरेंडर कर दिया और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन उसकी बीमारी का पता चलने के बाद मुझे बहुत दुख हुआ और मम्मी भी उसकी बीमारी जानकर बहुत परेशान हो गई हैं। वो एक बार आरुषि से मिलना चाहती हैं, उसे देखना चाहती हैं कि उनकी दूसरी बेटी कैसी है। प्लीज़ हमें मत रोको। आस्तिक ने आँखें बंद की और माथा पीट लिया। अरुणिमा के आगे वो हमेशा हार जाता था, लेकिन उसने गुस्से में कहा, ठीक है, तुम जेल जाना चाहती हो उससे मिलने के लिए तो जा सकती हो, लेकिन तुम अकेली नहीं जाओगी, मेरी सिक्योरिटी तुम्हारे साथ जाएगी और इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। तुम चुपचाप उससे मिलो और अगले ही पल वापस आ जाओ। उसके साथ बैठकर बहन मिलाप मत करने लगना। अरुणिमा ने मुस्कुराते हुए हामी भरी। उसके बाद वो आशा जी और ब्रजेश जी के साथ आस्तिक की प्राइवेट कार में सेंट्रल जेल के लिए निकल जाती हैं। जैसे ही वो वेटिंग रूम में पहुंचती हैं, उनका मिलने का समय पहले से ही तय था, क्योंकि ये महिलाओं की जेल थी तो यहाँ पर महिला कर्मचारी थी।